जब वैष्णवों का आतुर्भाव होता है तो हर्ष करने का भी अवसर है और शोक करने का भी अवसर है। शोक करने का अवसर है कि इस धराधाम को छोड़ के वो चले गए, और हर्ष का अवसर क्या है? हर्ष का कारण यह है कि वे भगवान के धाम में गए हैं, भगवान की नित्य सेवा में गए हैं। तो हर्ष और ये शोक, ये दोनों बातें होती हैं। और इन दोनों का जो तिरुभाव हमारे वैष्णव कैलेंडर में लिखा हुआ है, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि इनका हमारे वैष्णव कैलेंडर में केवल तिरुभाव ही आता है, आविर्भाव नहीं आता है। आप समझ रहे हैं? कौन? भूगर्भ गोस्वामी और काशेश्वर पंडित। तो साल में केवल एक ही दिन आता है कि जब हम इनको याद करें, ठीक है ना। तो इसलिए आज हम पूरे आज की जो कक्षा है, इसमें हम पूरी कक्षा में इन दोनों महापुरुषों की याद करेंगे, इनके विषय में कुछ सुनेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भूगर्भ गोस्वामी के विषय में, ये गौड़ी वैष्णव चरितामृत जो महर्षि स्वामी ने लिखा है, इसमें से मैं पढ़ के सुनाऊंगा। इसके बाद कुछ अन्यत्र भी बातें हैं, उनको भी मैं पढ़ूंगा। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। श्री गदाधर पंडित के शिष्य श्री भूगर्भ गोस्वामी। तो सबसे पहली बात क्या है भूगर्भ गोस्वामी के बारे में जो आपको जानना है, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो क्या है? गदाधर पंडित के शिष्य हैं। कितना सौभाग्य। जो पंच तत्वों में से हम जब बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर है, चौथे नंबर में गदाधर पंडित, और ये कौन है? श्रीमती राधा रानी है ना। तो उनके शिष्य हैं। अब सोचिए कितने सौभाग्यशाली है, ये भूगर्भ गोस्वामी इनके शिष्य हैं। और वास्तव में ये वास्तव में है कौन? कृष्ण की लीला में ये राधा रानी की मंजरी है, प्रेम मंजरी है। आप समझ रहे? तो नित्य लीला में ये जो है राधा रानी की प्रेम मंजरी है, जो सेवा करती हैं, है ना। और जब राधा रानी चैतन्य लीला में पुरुष रूप में प्रकट हुई गदाधर पंडित के रूप में, तो प्रेम मंजरी भी पुरुष रूप में प्रकट हुई भूगर्भ गोस्वामी के रूप में, और क्या? शिष्य बने, है ना। तो ये जो है पहली बात है समझने की। और दूसरी बात क्या है? श्री लोकनाथ गोस्वामी के घनिष्ठ मित्र हैं भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी। ये दोनों क्या है? दो देह एक प्राण। जब घनिष्ठ मित्रता होती है तो कैसी होती है? कि दो शरीर हो एक प्राण हो, ऐसे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रेरित ये दोनों सर्वप्रथम व वरिष्ठतम भक्त थे जिन्होंने वृंदावन में वास किया। आप सोचिए कितने बड़े साहस का काम था, सबसे पहले ये दो लोग आए, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रेरित सबसे पहले वृंदावन में आए। कौन? भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी, है ना। अब ये इसको क्यों कहें कि साहस की बात है? क्योंकि उस समय वृंदावन ऐसा नहीं था, आप समझ रहे। चैतन्य महाप्रभु के समय में ये जो वृंदावन था, ये ऐसा वृंदावन नहीं था। यहां पर घोर जंगल था, और लीला स्थलियां भी सब लुप्त थी, है ना। ना कोई मंदिर, ना श्याम कुंड, राधा कुंड, बस केवल एक गिरिराज गिरिराज का पता चलता था, गिरिराज गोवर्धन है, यमुना जी का पता चलता था, ये यमुना जी हैं, और ब्रजराज का पता चलता था कि ये धूल है, कृष्ण की लीला जो है कि धूल है ये। तो केवल तीन चीजों का पता था, बाकी और कुछ भी पता नहीं था, ना कोई मंदिर और ना कोई लीला स्थली, कुछ नहीं। घोर जंगल, और इसमें कौन रहते थे? जंगली हिंसक जानवर। सोचिए ऐसे में कौन आना चाहेगा, किसकी हिम्मत होगी आने की? छह गोस्वामी तो बाद में आए, छह गोस्वामियों के भी पहले जो दो गोस्वामी आए हैं जो कि यहां पर ठहरे, वो भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी हैं। तो सबसे पहले और वरिष्ठतम भक्त हैं, मतलब सबसे सीनियर हैं ये भूगर्भ गोस्वामी लोकनाथ गोस्वामी, सबसे सीनियर हैं इस वृंदावन के वासी ब्रजवासियों में से, है ना। ब्रजवासियों में भी सीनियरिटी होती है ना, तो सबसे सीनियर ब्रजवासी ये दो लोग हैं, है ना, जिन्होंने वृंदावन में वास किया। श्री रूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी के पधारने के पूर्व इन्होंने राधा गोविंद जी की लुप्त पुण्य स्थलियों को अनावृत करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले कार्य जो है मतलब इन्होंने प्रारंभ किया क्या, लीला स्थलियों को खोजना। लीला स्थलियों को खोजने का मतलब क्या है, भांडीर वन कहाँ है, बिल वन कहाँ है, खदीर वन कहाँ है, और कितने स्थान हैं, अरिष्टग्राम कहाँ है ना, और बंसीवट है ना, भांडीरवट है, ये सब स्थान जो है खोजना। अज्ञात को ज्ञात कराने की आधुनिक वैज्ञानिकों की आक्रामक कार्य विधि के विपरीत इन्होंने जो है लीला वनों की खोज की, लीला स्थलियों की खोज की है? तो जो सामान्य विधि है वैज्ञानिकों की वो आक्रामक विधि है। आक्रामक विधि का मतलब क्या है कि भाई किसी स्थान का पता लगाना कि प्राचीन काल में इस स्थान में क्या घटना हुई। तो वैज्ञानिक विधि क्या है कि वो खुदाई करते हैं, खुदाई करते हैं और अवशेष निकालते हैं कि अंदर गड़े हुए तो उसमें जो है कुछ शिलालेख मिलते हैं, कुछ और भी चिन्ह मिलते हैं, या कोई भवन का जो है अवशेष मिलता है। तो लोग सोचते हैं भाई इस तरह से जो है मतलब यहाँ कोई घटना घटी या कौन आया कौन गया। तो ये वैज्ञानिकों की विधि है। तो ये इसको कहते हैं आक्रामक विधि। आक्रामक विधि का मतलब क्या है, खुदाई करो, ये करो, तोड़ो फोड़ो, ये करो वो करो और पता लगाओ। लेकिन भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी और जो वृंदावन के छह गोस्वामी हैं, उन्होंने इस विधि का प्रयोग नहीं किया। आप समझ रहे कि तोड़ फोड़ करो और खुदाई करो, ये करो वो करो, पता लगाने के लिए भाई कृष्ण की लीला स्थलियां कौन सी हैं, नहीं वो नहीं है। दूसरी विधि क्या है खोजने की, आत्मसमर्पण की विधि। आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर आपको कुछ खोज करना है तो आक्रामक विधि से नहीं आप खोज सकते हैं, आक्रामक विधि से नहीं बल्कि आत्मसमर्पण की विधि से। आत्मसमर्पण क्या है, वे सहज भाव से वृंदावन में सर्वत्र 12 वनों के नाम पुकारते थे। यहां वृंदावन लिखा, वृंदावन नहीं बल्कि ब्रजमंडल, ब्रजमंडल समझना चाहिए। ब्रजमंडल में 12 वन है, वृंदावन उनमें से एक है, जहां हम लोग बैठे हैं वो वृंदावन है। तो सर्वत्र नाम पुकारते थे क्या, भांडीर वन, काम वन, महावन, तालवन, तुम कहां हो, तुम कहां हो, ऐसे पुकार लेते। क्यों, क्योंकि जो आध्यात्मिक स्थान है यहां पर हर चीज आध्यात्मिक है, हर चीज चेतन है। तो जब पुकार पुकार की जाती है, करुण पुकार की जाती है, तो ये जो लीला स्थल हैं ये जो है स्वयं अपना परिचय देते हैं कि हम यहां पर हैं, हम यहां पर हैं। वो चिल्लाते भांडीर वन, हाँ हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं, मैं यहाँ ना। तो ऐसे जो है जैसे भट्टों के नाम बोलते हैं, संकेत भट्ट, भांडीर भट्ट, बंसी भट्ट, तो वो आवाज देते हैं, हाँ हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, इधर आओ हमारा दर्शन करो, देखो है ना, ये है ना। तो क्योंकि जड़ वस्तु नहीं है जो ब्रजमंडल में है, जड़ वस्तु नहीं है, हर चीज चेतन है। और श्रीमती वृंदा देवी ने प्रत्येक वन की स्थिति प्रकाशित कर दी। वृंदा देवी की प्रार्थना करते हैं वृंदा देवी, तो फिर क्या क्या पता नहीं चलेगा, वृंदा देवी क्या नहीं बता देंगे। तो ऐसे जो ये लोग भक्त लोग थे चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो भेजे गए, उन्होंने ब्रजमंडल के जो लीला स्थान है इस विधि से पता लगाए। आगे ऐसा कहा जाता है कि भौतिक विक्षेप से बचने के लिए भूगर्भ अपना भजन भूमिगत रहकर करते थे, इस कारण उनका नाम भूगर्भ है। भू अर्थात भूमि, गर्भ का अर्थ है कंदरा, गुप्त स्थान, तो भूगर्भ गोस्वामी इनका नाम पड़ा। ये राधा गोपीनाथ की नित्य निकुंज लीला में प्रेम भद्र रेखिका है, प्रेम मंजरी समझ, प्रेम मंजरी है ये। इनकी समाधि राधा दामोदर मंदिर के प्रांगण में रूप गोस्वामी की समाधि के समीप है। तो आज के दिन अगर हो सके तो दर्शन करना चाहिए इनके समाधि का। तो इनके विषय में कुछ और भी जानकारी हम सुनेंगे। मगध राजधानी के मुंगेर नगर में इनका जन्म हुआ। चैतन्य महाप्रभु के हिंदी भाषी सर्वश्रेष्ठ अनुगामी हैं ये। कौन? भूगर्भ गोस्वामी हिंदी भाषी। कि चैतन्य महाप्रभु के जितने अनुयायी हैं वो सब कैसे हैं? बंगाली हैं, है ना। हिंदी बोलने वाले बहुत कम है ना। तो हिंदी बोलने वालों में जैसे हम लोग हिंदी बोलने वाले हैं, आप लोग अधिकांश हिंदी बोलने वाले हैं, कुछ बंगाली भी हैं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु के उस समय अनुयायियों में जो है हिंदी भाषी अनुयायियों में ये क्या है? सर्वश्रेष्ठ अनुगामी है, सबसे श्रेष्ठ। पढ़ाई को बीच में छोड़ करके ही ये आ गए। इन्होंने छोड़ दिया अपना घर, पढ़ाई को बीच में ही छोड़ करके अपना घर भी छोड़ दिया, और कहां पर आ गए? नीलाचल के उद्यान में आ गए। उस समय भगवान चैतन्य संन्यास लीला कर रहे थे। संन्यास लीला कहां पर? जगन्नाथपुरी में, नीलाचल। और उस जगन्नाथपुरी में एक उद्यान था, उद्यान मतलब बगीचा, जहां पर गदाधर पंडित रहते थे, है ना। तो गदाधर पंडित के इस बगीचे में ये आए। सबसे पहले अपना घर छोड़ करके जगन्नाथपुरी आए, और जगन्नाथपुरी में कहां पर आए? गदाधर पंडित के बगीचे में आए, है ना। गदाधर पंडित के पास आए, कुछ दिन निवास किया, श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। गदाधर पंडित का मुख्य कार्य चैतन्य लीला में, इनका मुख्य कार्य क्या है? श्रीमद् भागवत का पाठ करना, है ना। और सोचिए कि चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित के मुख से, यानी राधा रानी के मुख से श्रीमद् भागवत सुना करते थे, है ना। तो इनका कितना सौभाग्य था भूगर्भ गोस्वामी का, कि गदाधर पंडित के बगीचे में रह करके डेली दर्शन करते थे चैतन्य महाप्रभु का, कि वह श्रीमद् भागवत सुनते हैं गदाधर पंडित से, है ना। और ये गदाधर पंडित के शिष्य हैं। तो क्या इनका सौभाग्य था कि इनके गुरु महाराज के मुख से चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत सुनते हैं, है ना। ये इनका सौभाग्य था। और इन्होंने श्रीमद् भागवत का अध्ययन भी किया गदाधर पंडित से। नित्य चैतन्य महाप्रभु दर्शन करते थे अपने गुरु के बगीचे में, और जगन्नाथ मंदिर में रोज नाम संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु करते थे। तो इनका सौभाग्य था कि ये स्वयं अपनी आंखों से देखते थे चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन, चैतन्य महाप्रभु के प्रेम का रसास्वादन करते थे। तो लोकनाथ गोस्वामी को जब चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया, लोकनाथ गोस्वामी को जब चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया कि आप जाइए ब्रजमंडल के लीला स्थलियों का जो है पता लगाइए, वहां पर निवास करिए, है ना। तो सोचिए कि जगन्नाथपुरी से जब लोकनाथ गोस्वामी जाए ब्रजमंडल, तो एक पहली कठिनाई तो उनकी यह है कि वे हिंदी नहीं जानते हैं, वो बंगाली बंगाली भक्त हैं, है ना। तो पता लगाना बड़ा मुश्किल है रास्ते का, किस रास्ते जाएं। सोचिए पैदल जाना था, उन दोनों तो पैदल यात्रा हो रही थी। तो लोकनाथ गोस्वामी जगन्नाथपुरी से जाएंगे वृंदावन, तो लोगों से कैसे रास्ता पूछेंगे। और दूसरी कठिनाई ये थी कि लोकनाथ गोस्वामी कैसे थे, भाव में डूब जाते थे, और अगर भाव में डूब जाएं, प्रेम में डूब जाएं, तो उन्हें कुछ होश ही नहीं कि वे कहाँ हैं, है ना। तो कौन ख्याल करेगा उनका, है ना। तो ऐसी स्थिति में गदाधर पंडित ने इनको जो है इनको भार दिया लोकनाथ गोस्वामी का, कि लोकनाथ गोस्वामी को आप ले जाइए वृंदावन, है ना। तो दोनों भार लोकनाथ गोस्वामी का, एक तो उनकी प्रेम में जो है वो भेबल अवस्था हो जाती है, तो देखभाल करना है उनकी, और दूसरा रास्ता भी पूछना है कि कैसे जाना है। तो दोनों पुरी से नाम संकीर्तन करते हुए जंगलों से गुजरे, शहरों से गुजरे, और वृंदावन पहुंचे। जंगल के पशु पक्षियों को भी नाम प्रदान किया, और शहर के जो स्त्री पुरुषों को भी नाम प्रदान किया, वृंदावन में आए। तो लोकनाथ के आदेश का पालन करते थे, विलुप्त लीला स्थलियों का पता लगाते थे। वृंदावन के वैष्णवगण इनके समीप आए। हाँ, अब आगे चल करके, फिर आगे चल करके तो चैतन्य महाप्रभु आदेश से और भी छह गोस्वामी आए ब्रज में, और बंगाल से बहुत से भक्त फिर वृंदावन में निवास करने के लिए आए। तो वृंदावन काफी बच गया था, और मंदिरों का भी निर्माण हो गया था, अर्चा विग्रहों की स्थापना हो गई, है ना। तो उस समय एक बड़ी कमी का अनुभव हुआ, एक बहुत बड़ी कमी का अनुभव हुआ। वैष्णवों के लिए। और वो क्या थी कमी, कि वैष्णव लोग जो है चैतन्य महाप्रभु का चरित्र रोज सुना करते थे, और चैतन्य महाप्रभु के चरित्र चैतन्य भागवत के रूप में बहुत दिव्य चरित्र भी प्राप्त हो गया था वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा लिखित। लेकिन चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने भगवान चैतन्य की संन्यास लीला का ज्यादा वर्णन नहीं किया, जो अंतिम लीलाएं हैं उनका ज्यादा वर्णन नहीं किया। क्यों? क्योंकि ग्रंथ विस्तार के भय से, ये ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो जो लेखक होते हैं वो ग्रंथ के विस्तार से हमेशा भयभीत रहते हैं कि अगर ग्रंथ ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो लोग जो है देखने में डरेंगे कि इतना बड़ा ग्रंथ कौन पढ़ेगा, आप समझ रहे हैं। तो इसलिए वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु की संन्यास लीला का ज्यादा वर्णन नहीं किया, क्योंकि पहले से ही उनकी जो बचपन की लीलाएं और जो और अन्य यौवन की लीलाएं थी तो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो ग्रंथ बहुत बड़ा हो गया था। लेकिन वृंदावन के जो वैष्णव थे वो चैतन्य महाप्रभु को संन्यास के रूप में ज्यादा जानते थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु सन्यासी के रूप में दर्शन किया, तो उनको बहुत कमी महसूस होती थी कि उनको उनकी सन्यास लीलाओं का ज्यादा वर्णन नहीं प्राप्त हो रहा है और वो सुनना चाहते थे। तो सब वैष्णव लोग जो है इनके पास आए, भूगर्भ गोस्वामी के पास आए, और भूगर्भ गोस्वामी ने आदेश दिया कृष्णदास कविराज को, कृष्णदास कविराज को आदेश दिया। तब इनकी आज्ञा से कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत लिखा। तो एक बार आप सुनिए, बड़ी अद्भुत घटना है, ये गिरिराज की परिक्रमा कर रहे थे तो पांव में भारी चोट लग गई, पांव में भारी चोट लग गई, तो भगवान अब ये जो है चलना बड़ा मुश्किल हो गया, ये गिर गए हैं तो चलना बड़ा मुश्किल हो गया। तो भगवान जो है एक पहलवान भक्त के रूप में आए, एक पहलवान भक्त के रूप में आए हैं, और अब ये तो मना कर रहे थे कि नहीं नहीं मुझे मत उठाओ, लेकिन मना करने पर भी उन्होंने कंधे पर बिठा लिया और निवास स्थान पर ले आए, इनके निवास स्थान पर भजन कुटीर पर ले आए, है ना। अब पता कैसे चला कि भगवान है, है? अगर भगवान अपने को छिपाए तो कौन जान सकता है। तो पता कैसे चला, जैसे ही भगवान ने इनको छोड़ा इनकी भजन कुटीर में और गायब, आप सुन रहे, अब कौन हो सकता है, भगवान ही कौन हो सकता है। जैसे छोड़ा और वो खड़े खड़े गायब हो गए, अंतर्धान हो गए, तब जो है ये बहुत रोए, पता चला कि रहस्य कि कृष्ण ने जो है मेरी सेवा कर दी, तो बहुत रोए, बहुत रोए। क्यों रोए? कि मैंने कृष्ण से सेवा ले ली, ये सेवा की भावना है, है? कि हमें कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, हमें कृष्ण को सेवा देनी चाहिए, कृष्ण से मैंने सेवा कैसे ले ली, तो बहुत रोए। तो दिन भर जो है रोते रहे, बिलाप करते रहे कि मतलब भगवान ने जो है मुझे अपने कंधे पर उठाया, ये तो मेरा बड़ा अपराध हो गया, बड़ा अपराध हो गया। खूब रोए, और रात में भी जो है ये भजन कर, दिन रात भजन करते थे, वो तो बैठे बैठे थोड़ा थोड़ा ये हो जाता था ना, वही उनका रेस्ट होता था, ये गोस्वामियों का जो रेस्ट होता है इसी तरह से होता था। रात भर भजन करते हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसी आंख लग गई तो वही रेस्ट होता था। तो थोड़ी देर के लिए जब इनकी आंख लगी तो भगवान इनको दर्शन दिया, और श्याम सुंदर इनके स्वप्न में आए और बोले, तुम मेरा नित्य भजन पूजन करते हो तो मैंने एक बार कंधे में बिठाकर घर पहुंचाया, तो क्यों व्याकुल हो रहे हो तुम दिन रात मेरा भजन पूजन कर रहे हो, है? और मैंने थोड़ा सा जो है कर दिया तो इसमें तुम इतना व्याकुल हो रहे हो, है ना। तो भगवान की वाणी से कृतार्थ हो गए। तो राधा छैल बिहारी, ये छैल चिकन यहां पर बोलते हैं ना राधा दामोदर मंदिर में, तो इनके अर्चा विग्रह राधा दामोदर मंदिर में है। श्रील भूगर्भ गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। अब हम सुनेंगे काशेश्वर पंडित के बारे में। ईश्वरपुरी ने अपने दो शिष्यों गोविंद और काशेश्वर पंडित को चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए जगन्नाथपुरी भेजा। देखिए पहली बात, काशेश्वर पंडित के बारे में पहली बात जो जानना है वो क्या है कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई, चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई गोविंद और काशेश्वर, ये दोनों चैतन्य महाप्रभु गुरु भाई हैं। और ईश्वरपुरी ने इन दोनों को चैतन्य महाप्रभु की सेवा में भेजा कि तुम लोग जाओ चैतन्य महाप्रभु की सेवा करो, है ना। कितना सौभाग्य है, अपने गुरु भाइयों से सेवा स्वीकारने में संकोच करते हुए श्री चैतन्य ने अंततः से अपने गुरु की इच्छा मानकर अपनी सहमति प्रदान कर दी। चैतन्य महाप्रभु का संकोच हो रहा है कि अपने गुरु भाई से मैं कैसे सेवा लूं, है ना। लेकिन फिर जब गुरु का भी आदेश है और गुरु का आदेश फिर ज्यादा प्रबल है, इसलिए उन्होंने इनको फिर अपनी सेवा में स्वीकार कर लिया। ब्रज लीला में भेंगर और भंगुर के नाम से विख्यात गोविंद और काशीश्वर श्री कृष्ण के सेवकों के रूप में सेवारत हैं, है ना। तो यहां पर क्या बताया जा रहा है कि ब्रज लीला में जो भेंगर नाम का सेवक था कृष्ण का, वही गोविंद हैं चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य लीला में वो गोविंद हैं और जो भंगुर नाम के सेवक थे कृष्ण के, हा? वो काशीश्वर हैं, है ना। तो आप समझिए कि ईश्वरपुरी ने ये जान लिया था कि कृष्ण लीला के सेवक हैं, इसलिए इन्होंने चैतन्य लीला में भी उनको उनकी सेवा में भेज दिया, है ना। काशीश्वर पंडित की विशेषता क्या है, इनका शरीर बहुत सुगठित और बलिष्ठ था, शरीर अच्छा सुगठित और बलिष्ठ था, है ना। तो इसमें बहुत सेवा होती है, ऐसे शरीर की बहुत आवश्यकता है, सेवा में। क्या चैतन्य महाप्रभु को जन समूह द्वारा स्पर्श किए जाने से बचाने के लिए ये आगे आगे चलते थे, समझे। बहुत आवश्यकता थी कि भगवान चैतन्य जब जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते हैं तो इतनी भीड़ उनका दर्शन करने के लिए। अब चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जा रहे हैं और भीड़ जो है एकत्रित हो रही, टूट पड़ रही है इनका दर्शन करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने के लिए, है ना। तो कोई बलवान व्यक्ति की आवश्यकता है जो भीड़ को थोड़ा दूर हटाए और चैतन्य महाप्रभु के लिए रास्ता बनाए, है ना। तो मेरे विचार से जो है वो डंडा हाथ में लेकर के ऐसे मतलब करते होंगे जिससे कि एक बड़ा डंडा लेकर के जिससे कि लोगों को जो है दूर ठेला जाए। तो इसके लिए बलिष्ठ शरीर की आवश्यकता है। तो आगे आगे चलते थे और कीर्तन के उपरांत समस्त भक्तों को प्रसाद परोसते थे। दो कार्य, चैतन्य महाप्रभु जब चलते हैं तो भीड़ को दूर करने का काम, और जब प्रसाद ग्रहण करते हैं तो प्रसाद परोसने का काम। श्री गौर सुंदर ने श्री रूप गोस्वामी के अर्चा विग्रह गोविंद जी की पूजा के निमित्त काशीश्वर को वृंदावन जाने के लिए कहा। अब देखिए, रूप गोस्वामी को गोविंद जी प्राप्त हुए थे, तो बड़ी मार्मिक घटना है, गोविंद जी कैसे प्राप्त हुए रूप गोस्वामी को, है ना। और रूप गोस्वामी को जो है उन्होंने तो दर्शन दिया रूप गोस्वामी के हाथों, वे जो है जमीन से बाहर निकले गोविंद जी, है ना। अब सोचिए कि कितना मतलब गोविंद जी के प्रति प्रेम होगा रूप गोस्वामी का, और सेवा की कितनी आवश्यकता है गोविंद जी की। लेकिन रूप गोस्वामी को आदेश कुछ दूसरा प्राप्त हुआ है, चैतन्य महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का आदेश तो कोई दूसरा प्राप्त हुआ है। अगर गोविंद जी की सेवा करें तो दिन रात गोविंद जी की सेवा करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु के फिर दूसरे आदेशों का पालन कैसे करेंगे, है। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है रूप गोस्वामी के लिए, और भी जो छह गोस्वामी हैं, है? कि वे जो है भक्ति के ग्रंथ लिखें, है? ग्रंथों को लिखना ये बहुत आवश्यक कार्य था। तो रूप गोस्वामी के लिए अगर ग्रंथों को लिखना आवश्यक है तो चैतन्य महाप्रभु की चिंता है कि गोविंद जी की सेवा कौन करेगा। तो गोविंद जी की सेवा के लिए भी कोई अच्छा भक्त चाहिए, है, जिसके अंदर सेवा की भावना हो। तो काशीश्वर पंडित को, जो चैतन्य महाप्रभु सेवा में थे, चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनको गोविंद जी की सेवा में भेजा। तो ये बहुत डर गए गोविंद जी की सेवा के लिए, अब ये जाने में बहुत डर रहे हैं। क्यों? कि चैतन्य महाप्रभु का वियोग, चैतन्य महाप्रभु का वियोग प्राप्त होगा। तो इन्होंने कहा कि हे भगवान, यदि मैं आपका संग त्याग दूंगा तो मेरे हृदय दो टुकड़े हो जाएंगे, मेरे हृदय के दो टुकड़े हो जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने इनको अपना एक अर्चा विग्रह दिया, साक्षात महाप्रभु के समान जो दिखाई पड़ता है, गौर गोविंद नाम से चैतन्य महाप्रभु दिया। तो ये बंसी बजाते हुए कृष्ण का स्वर्णिम रूप है, सोने जैसा रंग है, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ही है वो, चैतन्य महाप्रभु का अर्चा विग्रह है जो कि कृष्ण के रूप में है। तब काशेश्वर पंडित गौर गोविंद और गोविंद जी की सेवा के निमित्त प्रसन्नतापूर्वक वृंदावन प्रस्थान कर गए इस कारण से। तब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु छोड़ा जब उन्होंने ये अर्चा विग्रह प्राप्त किया। साधन दीपिका में कथन है कि मैं श्री काशेश्वर पंडित की वंदना करता हूं जिनके प्रेम और भक्ति की शक्ति श्री चैतन्य को अर्चा विग्रह के रूप में पश्चिम भारत में ले आई। पश्चिम भारत यानी राजस्थान। तभी वो गोविंद जी और गौर गोविंद जी दोनों जयपुर में हैं, जो मूल अर्चा विग्रह हैं जिनकी काशेश्वर पंडित पूजा करते रहे, अभी जयपुर में हैं, तो पश्चिम भारत में आ गए हैं। आज जयपुर राजस्थान में हजारों भक्तगण द्वारा गौर गोविंद एवं गोविंद जी के मूल अर्चा विग्रहों की प्रेम पूर्वक आराधना की जा रही है। काशेश्वर पंडित की मूल समाधि 64 समाधि में है। अब जैसा कि हमने सुना कि काशेश्वर पंडित कौन है, भंगुर, चैतन्य कृष्ण की लीला में भंगुर हैं। तो मुझे एक पुस्तक मिली राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका रूप गोस्वामी की लिखी हुई, तो इसमें बहुत से सेवकों के नाम दिए गए हैं जिनकी कृष्ण की सेवा में अलग अलग काम था, है ना। तो ये बड़ा रोचक वर्णन है, तो मैंने सोचा ये आपको सुना दूं मैं। श्री कृष्ण के विविध प्रकार के सेवक गण हैं जो सेवा द्वारा उन्हें आनंद प्रदान करने में अनुरक्त हैं। उनमें से सुने नाम, बड़े रोचक नाम है ये, कलार, भारती बंध, गंधवेद, ये जो है विट सेवक कहलाते हैं। विट सेवक, विट सेवक का मतलब क्या है, जो वेश रचना करने में निपुण है और बातचीत करने में चतुर हैं, वशीकरण आदि क्रियाओं में निपुण है। तो ऐसे जो सेवक हैं ये विट सेवक कहलाते हैं, है ना, जिनके कुछ नाम दिए गए हैं। फिर दूसरे प्रकार के सेवक हैं चेट सेवक। चेट सेवक में भंगुर और भृंगार, यानी वही गोविंद और काशेश्वर पंडित, है ना। तो ये चेट सेवक हैं। चेट सेवक का क्या मतलब है, चेट का मतलब है किसी बात का पता लगाने में जो चतुर हो, गूढ़ कर्मों को करने वाला, प्रगल्भ बुद्धियुक्त सहायक चेट कहलाता है, बहुत चालाक। तो कृष्ण को जो है कुछ चालाक सखाओं की भी आवश्यकता है, तो ये जो है चेट सखा है। भंगुर, भृंगार, सांधिक, ग्रहिल, रक्तक, पत्रक, पत्री, मधुकंठ, मधुव्रत, सालिक, तालिक, माली, मान और मालाधर, ये सब कौन से सेवक हैं, चेट सेवक। ये श्री कृष्ण की वेणु धारण करते हैं, सिंगा धारण करते हैं, मुरली धारण करते हैं, लकुटी और पास, पास मतलब गई को धोने के लिए रस्सी की आवश्यकता पड़ती है, तो वो रस्सी धारण करते हैं। और कृष्ण को गैरक आदि धातुएं उपहार दिया करते हैं। कृष्ण को अगर श्रृंगार करना है इन धातुओं से, तो ये प्रदान करने वाले सेवक हैं। और सुनिए, कृष्ण के जो है तांबूलिक सेवक हैं, जो तांबूल प्रस्तुत करने वाले हैं, इनके नाम सुनिए, पल्लव, मंगल, फुल, कोमल, कपिल, सुविलास, विलास, रसाल, रसशाली और जम्बूल। ये सेवक क्या करते हैं, कृष्ण को तांबूल प्रदान करते हैं। ये परिष्कार परिच्छन्न तांबूल की निर्माण परिपाटी में विचक्षण है। ये सभी श्री कृष्ण के कम आयु वाले हैं, सदैव श्री कृष्ण के निकट रहते हैं। और ये लीला कथा और गीत वाद्य आदि की कला में प्रारंभिक अवस्था वाले हैं। अब सुनिए, कृष्ण के जो है कुछ सेवक हैं जिन्हें कहा जाता है जल सेवक। जल सेवक का मतलब स्पष्ट है, जो जल लाने वाले हैं। इनके नाम सुनिए, पुयोद और वारिद। ये सेवक क्या करते हैं, श्री कृष्ण के व्यवहार के लिए जल से परिपूर्ण पात्रों को उठाकर लाते हैं। अब कुछ सेवक हैं कृष्ण के वस्त्र सेवक, जो क्या करते हैं, वस्त्रों की धुलाई करते हैं, है ना। इनके नाम है सारंग और बकुल। हाँ, ये सेवक जो है श्री कृष्ण की वस्त्र सेवा में, अर्थात वस्त्रों की सफाई करने, वस्त्रों को सजाकर रखने में कुशल है, ये कार्य है। फिर कुछ सेवक है कृष्ण के वेशकारी, जो श्रृंगार करते हैं कृष्ण का। इनके नाम है प्रेम कंद, महागंध, सरिंद्र, मधुकंदल और मकरंद। ये सेवक क्या हैं? वेश धारण कराते हैं, श्रृंगार करते हैं कृष्ण का। फिर कुछ सेवक हैं गांधिक, गांधिक मतलब सुगंधित वस्तुएं लाने वाले। तो ये इनके नाम हैं सुमन, कुसुमोल्लास, पुष्पहास और हर। ये सेवक श्री कृष्ण के शरीर में अगुरु, कुमकुम आदि अंग रागों को रंजित करते हैं। श्री कृष्ण को मालाएं पहनाते हैं और फूलों के अलंकार भी बनाते हैं, फूलों के अलंकार। हरि बोल, हरि बोल। कितने लोग सो रहे हैं, है? कितने सोना नहीं चाहिए। अभी सुनिए, और कृष्ण के कुछ सेवक हैं नापित। नापित का मतलब जानते क्या? नाई, है? बाल काटने वाले, ये भी सेवक हैं, है? ये कृष्ण के सेवक हैं, नापित सेवक। इनके नाम सुनो, सुबंध, कर्पूर, सुगंध और कुसुम आदि सेवक श्री कृष्ण के नापित हैं। ये क्या करते हैं? केश संस्कार करते हैं और शरीर की मालिश करते हैं और दर्पण अर्पण करते हैं, दर्पण अर्पण करते हैं, दर्पण दिखाने आदि सेवाओं को बड़ी निपुणता के साथ करते हैं, है ना। और कुछ सेवक हैं अपर सेवक। अपर सेवक का मतलब है कुछ दूसरे कार्यों में जो लगे हैं। इनके नाम क्या हैं? स्वच्छ, सुशील और प्रगुण। ये कोषाधिकारी हैं, अर्थात भंडार आदि सेवा कार्यों में नियुक्त हैं। और विमल, कोमल, ये सेवक श्री कृष्ण के भोजन की थाली और पीढ़ा आदि को संभालते हैं। भोजन की थाली और पीढ़ा, इसको संभालने वाले हैं, है ना। ये नाम और कुछ सेवक हैं साधारण, साधारण सेवक भी हैं। सुनिए ध्यान से, शोभन और दीपन, ये जो सेवक हैं ये श्री कृष्ण के लिए प्रदीप धारण करते हैं, प्रदीप लैंप। और सुधाकर, सुधानाद और सानंद, ये सेवक मृदंग बजाने वाले हैं। ये सभी गीत, वाद्य आदि 64 कलाओं में निपुण हैं और बहुत गुणों से विभूषित हैं और महती एक विशेष प्रकार की बीजा बिना बजाने में समर्थ हैं। फिर कुछ सेवक क्या हैं? नर्तक सेवक कृष्ण की सेवा में क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। विचित्र राव और मधुर राव, ये सेवक श्री कृष्ण के बंदी हैं, अर्थात स्तुति पाठक, बंदी स्तुति पाठ करने वाले हैं। और चंद्रहास, इंदुहास और चंद्रमुख, ये नर्तक हैं। ये नाम। इसके बाद प्रबंधों की रचना करने में निपुण कुछ सेवक हैं, जो प्रबंध रचना करने में निपुण हैं। कलकंठ, सुकंठ, सुधाकंठ, भारत, सारद, विद्याविलास और सरस, ये सेवक सभी विषयों में प्रबंधों की रचना करने में निपुण, मतलब गीत बनाते हैं और उसको गाना शुरू कर देते हैं, संगीत की ताल भी देने वाले हैं ये। फिर कुछ सेवक क्या करते हैं? कृष्ण के वस्त्र सिलते हैं, सिलाई करने में निपुण रौचिक नामक सेवक है, जो कृष्ण का कंचुक सिलाई करता है। कंचुक माने कुर्ता, कृष्ण के कुर्ते की सिलाई करने वाला भी एक सेवक है। क्या नाम है उसका? रौचिक। कंचुक का मतलब कुर्ता, कंचुक सिलाई करते हैं कंचुक। और कुछ वस्त्र हैं जो वस्त्रों को धोने के कार्य में अधिकारी। सुमुख, दुर्लभ और रंजन, ये दास वस्त्रों को धोने के कार्य में आधिकारिक रूप से नियुक्त हैं, इनको अधिकार मिला है वस्त्रों को धोने का। और दो जो है मेहतर हैं कृष्ण के, पुण्य पुंज और भाग्य राशि, मतलब ये बहुत ज्यादा इनका सौभाग्य है। पुण्य पुंज मतलब कितना पुण्य उन्होंने किया है, पुण्य पुंज और भाग्य राशि, ये दो जो दास हैं श्री कृष्ण के घर और घर के आसपास के सफाई करने वाले मेहतर हैं, बहुत सौभाग्य है। फिर कृष्ण के आभूषण बनाने वाले भी सेवक हैं, उनके नाम क्या है, रंगन और टंकन, ये जो है ये सुनार हैं श्री कृष्ण के अलंकार बनाने वाले। और कुछ है कुम्हार हैं कृष्ण के, जो कि मटके बनाते हैं, मंथन पात्र बनाते हैं, इनके नाम है पवन और कर्मठ। ये क्या करते हैं, कुंभकार हैं, मंथन पात्र बनाते हैं मटके, और मिट्टी के बने कसोरे कुल्हड़ ये सब पात्र जो है मिट्टी से बनाते हैं, ये कृष्ण के सेवक हैं। और दो सेवक हैं जो बढ़ई हैं कृष्ण के, इनके नाम है वर्धकी और वर्धमान, ये श्री कृष्ण के लिए पलंग और बैलगाड़ी बनाने वाले बढ़ई हैं। और कुछ चित्रकार भी हैं कृष्ण के, जो रंग बिरंगे चित्र बनाते हैं कृष्ण के लिए, तो इनके नाम है सुचित्र और विचित्र। सुचित्र और विचित्र ये नाम के सेवक क्या करते हैं, कई कई प्रकार के रंग बिरंगे चित्र बनाते हैं कृष्ण के, बनाते होंगे कृष्ण की लीलाओं के बनाते होंगे। और कुछ शिल्पकार हैं, शिल्पकार हैं कृष्ण के, कुंड कंठोल करंड कटुल, ये जो है शिल्पकार हैं श्री कृष्ण की सेवा के लिए, क्या बनाते हैं, रस्सी बनाते हैं, मथनिया कुठार पेटी और सिक्का, सिक्का समझते हैं, फल सब्जी वस्तु रखने के लिए पाट की रस्सी से बनी हुई टोकरी, जो सिक्का होता है ना ऊपर टांगने वाला, तो वो जो है ये बनाने वाले ये हैं। और गौएं कृष्ण की कुछ विशेष हैं जो ज्यादा प्रिय हैं, ये हैं मंगला पिंगला गंगा पिशंगी मणिकस्तनी हंसी और बंसी प्रिया, ये गौएं कृष्ण की विशेष प्रिय हैं और नैच की अर्थात उत्तम गाय के रूप में विख्यात हैं। अब सुनिए श्री कृष्ण का जो है, श्री कृष्ण के दो बैल जो है विशेष प्रिय हैं, कृष्ण के दो बैल पद्मगंध और पिसंगाक्ष, ये दो बैल जो है कृष्ण के बहुत प्रिय हैं। और कृष्ण का एक मृग भी है उनका पर्सनल हरण, उसका नाम क्या है, सुरंग, कृष्ण का एक हरण है, है उनका अपना व्यक्तिगत हरण है, उसका क्या नाम है, सुरंग। और कृष्ण का एक बंदर भी है एक पर्सनल बंदर भी है कृष्ण के साथ रहता है, उसका नाम है दधि लोभ, दधि लोभ। और कृष्ण के पास में एक व्याघ्र भी है, व्याघ्र है और भ्रमर, अच्छा नहीं नहीं माफ करना, दो पालतू कुत्ते हैं कृष्ण के, कृष्ण के दो पालतू कुत्ते हैं दो, एक का नाम है व्याघ्र और दूसरे का नाम है भ्रमर। और एक कृष्ण का हंस भी है अपना राज हंस, उसका नाम है कलस्वन। और कृष्ण का एक मयूर भी है अपना पर्सनल, उसका नाम है तांडविक। और कृष्ण के जो है दो तोते भी हैं, उनके नाम है मयूर और दक्ष। अब हमने विचार किया कि आपको ये लीला जो दामोदर लीला है भगवान की, तो चूंकि दामोदर महीना है तो दामोदर लीला का कुछ वर्णन किया जाए। लेकिन ये दामोदर लीला श्रीमद् भागवत से अलग है। ये जो मैं सुना रहा हूं ये ब्रह्मवर्त पुराण की है, क्योंकि आप लोग श्रीमद् भागवत से सुना होगा, कई बार सुना होगा दामोदर बंधन की लीला है, तो ब्रह्मवर्त पुराण में कुछ अलग प्रकार से है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कल्प में जब भगवान लीला करते हैं तो लीलाओं में भेद होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ अलग ही लीला है, और इसका भी जो है अगर चिंतन करें तो बहुत इसमें रस है, बहुत रस है। इसको आप जो है सुनिए, ये जो लीला है ये इसमें बहुत मतलब अंतर है, कई प्रकार का अंतर है ना। तो इसमें कृष्ण ने जो चोरी की थी, अपने घर में जो चोरी की थी, तो वो स्थिति कुछ अलग ही है। जो हम लोग सुनते हैं इस कल्प की जो लीला है उसमें तो माता यशोदा घर में ही थी जब कृष्ण ने मतलब ये सब काम किया था, है ना। लेकिन ये जो दूसरे कल्प की लीला है इसमें क्या है, नंद और यशोदा स्नान करने के लिए यमुना तट गए हुए हैं, और इधर मधुसूदन श्री कृष्ण ने क्या देखा, पूरा घर भरा है दही माखन से, तो बहुत प्रसन्न हुए बहुत प्रसन्न हुए। घर में कोई नहीं है, अकेले हैं, और पूरा घर भरा है दही माखन से, तो बहुत प्रसन्न हुए देख करके कि आज बहुत अच्छा मौका मिला मुझे क्यों, कहीं मेरी खुराक को कोई जानता नहीं है, तो थोड़ा सा खिला देते हैं तो सोचते हैं ज्यादा कहीं नुकसान ना करे, तो कोई खिलाता नहीं है, तो आज मुझे कुछ जो है तृप्ति मिलेगी। तो देख करके कि पूरा घर भरा हुआ है गोरस से, बड़े प्रसन्न हुए। घर में जो दही दूध घी टक्र और मक्खन रखा था सब आपने भोग लगा लिया, सब भोग लगा लिया, कुछ नहीं छोड़ा है। छकड़े पर जो मधु मक्खन और मिठाइयां रखी थी, छकड़े पर रखी थी लदा था, उसे भी खा पी करके आप कपड़ों से मुंह पोछने की तैयारी कर रहे थे। अब सब सब खा लिया था, अब केवल एक काम रह गया था, मुंह पोछने का काम रह गया था, वो नहीं कर पाए वो नहीं कर पाए। इतने में ही गोपी यशोदा नहाकर अपने घर लौट आई, कोई चीज मिल नहीं रही थी किससे मतलब पोछा जाए मुंह, तो ढूंढ रहे थे पूछने के लिए। तो बाल कृष्ण को देखा घर में दही दूध आदि के जितने मटके थे सब फूटे और खाली दिखाई दिए, फोड़ फोड़ करके चाटा था, और सब खपचियां जो है एक तरफ रखी उनका ढेर लगाया कि मटकों को जो है मतलब खाया, निकाल निकाल के खाया, लेकिन फिर उसमें लगा रहता है ना तो तोड़ तोड़ना पड़ेगा, सब तोड़ तोड़ करके उनको जो चाटा, और सब जो है जो खपचियां हैं सब एक तरफ इकट्ठी कर दी, एक ढेर लगा हुआ है, सब फूटे और खाली दिखाई दिए, और मधु आदि के जो बर्तन थे सब एकदम खाली। ये सब देखकर यशोदा मैया ने बालकों से पूछा, अरे ये तो बड़ा अद्भुत कर्म है, मतलब घबरा गई माता, नुकसान से नहीं बल्कि बालक को जो है अब वो कुछ हो ना जाए, तो घबरा गई। बच्चों तुम सच सच बताओ ये अद्भुत अत्यंत भयानक कार्य किसने किया है, ये तो बड़ा भयानक कार्य किसने किया है। यशोदा की बात सुनकर सब बालक एक साथ बोल उठे, मैया हम सच कहते हैं तुम्हारा लाला ही सब खा गया और हम लोगों को कुछ नहीं दिया है। बालकों का ये वचन सुनकर नंदरानी कुपित उठी और लाल आंखें किए बैत लेकर के दौड़ी। इधर गोविंद भाग निकले, मैया पकड़ नहीं सकी, भला जो शिव आदि के ध्यान में भी नहीं आते, योगियों के लिए भी जिन्हें पकड़ पाना अत्यंत कठिन है, उन्हें यशोदा जी कैसे पकड़ पाती। यशोदा जी पीछा करके थक गई, शरीर पसीने से लथपथ हो गया, मन में ही क्रोध भरकर खड़ी हो गई, अब खड़ी हो गई गुस्से में खड़ी हो गई है ना, गला ओठ और तालु सब सूख गए। माता को यह थकी देखकर कृपालु पुरुषोत्तम जगदीश्वर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उनके सामने खड़े हो गए सामने खड़े हो गए। नंद रानी उनका हाथ पकड़ करके अपने घर ले आई, चुपचाप आई हाथ पकड़ करके लाई, उन्होंने मधुसूदन को वस्त्र के द्वारा वृक्ष में बांध दिया। अब देखो एक अंतर, ये भी बहुत बड़ा अंतर, क्या पेड़ से बांधा है? तो पेड़ से बांधा क्यों, दो पेड़ नहीं है एक ही पेड़ है, उस कल्प में जो है एक ही वृक्ष को जो है साप प्राप्त हुआ था, एक ही पेड़ था तो उखल से बांधने की फिर कोई आवश्यकता नहीं, उखल का कोई उपयोग नहीं। दो पेड़ होंगे तब तो उखल फंसेगा, एक ही पेड़ है तो उखल से कैसे तोड़ेंगे पेड़ को, है ना। तो माता यशोदा ने जो है और उखल की आवश्यकता भी नहीं पड़ी उनको चोरी करने के लिए, कि घर बिल्कुल कोई था नहीं, सब जो है जमीन में रखे हुए थे, सब मटके थे, तोड़ तोड़ करके खा खा करके सब खाली किए थे। तो पेड़ से बांध दिया, और किससे बांधा, वस्त्र से बांधा, वस्त्र से बांधा, तो जिससे कि लगेगा भी नहीं ना, रस्सी तो लगती है, अगर रस्सी से बांधे तो माता कैसे कृष्ण को कष्ट पहुंचाएगी। तो वस्त्र से बांधा, जिससे वस्त्र से जो है मतलब कृष्ण को मतलब वो गड़े मतलब चुभेगी नहीं ना, चुभेगा नहीं। तो श्री कृष्ण को बांध कर यशोदा अपने घर में चली गई। अब देखो एक ही लपेटे में बांधा है, वृक्ष के साथ में कृष्ण को वस्त्र से एक ही लपेटे में बांधा है, ऐसा नहीं कि रस्सी से बांधा फिर पेड़ से बांधा और बीच में कुछ दूरी हो, मतलब सटा करके बांध दिया कृष्ण को पेड़ में, वस्त्र से बांध दिया। और जगत पति परमेश्वर श्री हरि वृक्ष की जड़ के पास खड़े रहे। अब बेचारे खड़े हैं, अब तो हिल भी नहीं सकते, हिल भी नहीं सकते। तो हे नारद, ये कथा सुना रहे हैं नारायण ऋषि, नारद जी को सुना रहे हैं। हे नारद, श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से वो पर्वताकार वृक्ष सहसा भयानक शब्द करके वहां गिर पड़ा। अब किसने बालक की चेष्टा करी, ऐसे किया, पीछे की तरफ थोड़ा सा किया तो पीछे की तरफ पेड़ गिरा, और जब पेड़ गिरा पीछे की तरफ तो कृष्ण खड़े से क्या हो गए, लेट गए। पेड़ गिरा तो कृष्ण जो चित्त उसके ऊपर बंधे हुए हैं, पड़े हुए हैं कृष्ण। उस वृक्ष से सुंदर वेशधारी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, वो रत्नमय अलंकारों से विभूषित गौर वर्ण और किशोर अवस्था का था, सुवर्णमय श्रृंगार से विभूषित जगदीश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम करके वो दिव्य पुरुष मुस्कुराता हुआ दिव्य रथ पर आरूढ़ हुआ और अपने घर को चला गया। वो नलकुबर था और मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रहा है कि ये बंधे हुए हैं, ये छूट नहीं पा रहे, मुझे तो मुक्त कर दिया इन्होंने, तो हंसते हुए चला गया, मुझे मेरा तो उद्धार कर दिया, लेकिन अभी ये पड़े हुए हैं, अभी चित्त पड़े हुए हैं और बंधे हुए हैं पेड़ से। तो मुस्कुराता हुआ जो है अपने घर को चला गया। और वृक्ष को गिरते देख ब्रजेश्वरी यशोदा भय से त्रस्त हो उठी, उन्होंने रोते हुए बालक श्याम सुंदर को उठा करके छाती से लगा लिया, और वो रो रहे हैं कि अब खोलें कैसे, अब खुलें कैसे, तो बंधे पड़े हुए हैं, रो रहे हैं। तो माता ने छाती से लगा लिया, खोला वस्त्र को, इतने में गोकुल के गोप गोपियां सब उनके घर में आ पहुंचे। इतना भारी ये जो है वज्रपात हुआ था, इतना बड़ा वृक्ष, जैसे बताया गया है कि 100 देवताओं के वर्ष यानी 36,000 साल, वो दोनों जो वृक्ष थे 36,000 साल पुराने, सोचिए, और हरे भरे हों तो कितने मजबूत होंगे, और जब गिरेंगे तो कैसा भूमि में कंपन होगा और कैसी आवाज होगी, है ना। तो माता यशोदा जो है जब आई तो अब सब ने फटकारा माता यशोदा को, माता यशोदा को जो है सबकी डांट मिली खाने को, सबके सब यशोदा को फटकार रहे हैं। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक शिशु की रक्षा के लिए शांति कर्म किया, प्रसन्नता पूर्वक शांति कर्म किया, मतलब वैसे तो भयानक घटना हुई थी, लेकिन प्रसन्नता पूर्वक कि कृष्ण को जो है डर ना लगे, इसलिए प्रसन्नता पूर्वक शांति कर्म किया, कि बालक को जो है मतलब अगर तो डरेगा अगर हम लोग डरेंगे, इसी प्रसन्नता पूर्वक शांति कर्म किया। अब सब गोपियां यशोदा से कह रही हैं, अब सुनिए क्या बोल रही हैं, माता यशोदा को क्या क्या सुनना पड़ा। नंद रानी, अत्यंत वृद्धावस्था में तुम्हें यह पुत्र प्राप्त हुआ है, संसार में जो भी धन धान और रत्न है वो सब पुत्र के लिए ही तो है। आज हमने सचमुच जान लिया कि तुम्हारे भीतर सुबुद्धि नहीं है, सुबुद्धि नहीं है। ये जितने खाने की चीजें हैं अगर पुत्र ने नहीं खाई तो सब पृथ्वी पर बेकार हैं, अगर पुत्र ने नहीं खाया है। ओ निष्ठुरे, तुमने दूध दही के लिए अपने लाला को वृक्ष की जड़ में बांधा और स्वयं घर के काम काज में लग गई, देवस वृक्ष गिर पड़ा किंतु हम गोपियों के सौभाग्य से वृक्ष गिरने पर भी बालक जीवित बच गया। तुम्हारी गलती से तो बालक नष्ट हो गया होता, ये तो हमारा सौभाग्य था, ये हमारा सौभाग्य था, तुम्हारा तो दोष ही दोष है, जो गुण है वो हमारा है, ये बालक की रक्षा हुई। तो हमारे सौभाग्य से वृष्टि गिरने पर भी बालक जीवित बच गया। अरे मूर्खे, यदि बालक नष्ट हो जाता तो इन वस्तुओं का क्या प्रयोजन था? तूने जो कुछ भी जोड़ा है, इकट्ठा किया है, इसका क्या प्रयोजन? नंद जी ने भी यशोदा को लहना दिया, नंद जी ने भी डांटा। ब्राह्मणों और बंदीजनों ने बालक को सब आशीर्वाद दिए। ब्राह्मणों से आशीर्वाद जरूर लेते थे, क्या? चिरायु, चिरंजीवी, है? क्योंकि उनको इतना विश्वास था कि ब्राह्मणों के मुख से अगर कोई बात निकल जाए तो फिर वो जो है सत्य हो जाती है। इसलिए ब्राह्मणों से हमेशा बुलवाया करते थे कि बालक को आशीर्वाद दीजिए, है ना। सबने मिलकर ब्राह्मणों से श्री हरि का नाम कीर्तन करवाया। देखो ब्राह्मणों ने भी हरि नाम कीर्तन किया कृष्ण की रक्षा के लिए। तो नारद जी ने पूछा, भगवान वो सुंदर वेशधारी पुरुष कौन था जो गोकुल में वृक्ष होकर रहता था? किस कारण से उसे वृक्ष होना पड़ा? भगवान नारायण बोले, एक बार कुबेर पुत्र नलकुबर, तो इस कल्प में जो है जो घटना हुई, नलकुबर मणिग्रीव दोनों थे ना साथ साथ, लेकिन इसमें एक नलकुबर था कुबेर पुत्र। अप्सरा रंभा के साथ नंदन वन में चला गया, वहां उन्होंने भांति भांति से विहार किए। उस समय महर्षि देवल उधर से निकले। अभी देवल मुनि का साप है ये। उस कल्प में नारद जी क्या थे? नारद जी नहीं थे, उपब्रह्मण नाम के गंधर्व थे। 50 स्त्रियों के साथ में वो जो है श्रृंगार रस में लीन रहते थे। तो नारद जी को तो उस कल्प में होश ही नहीं था कि क्या हो रहा है ना। तो इस उस कल्प में जो है देवल ऋषि का साप प्राप्त हुआ था, है ना। तो देवल ऋषि उधर से निकले, उनकी दृष्टि नलकुबर और रंभा पर पड़ी। इधर मुनि को देखकर भी नलकुबर और रंभा ने उठकर उनका सम्मान नहीं किया। मुनिवर देवर उन दोनों की ऐसी दुर्वृत्ति देखकर कुपित हो गए। उन्हें साप देते हुए बोले, नलकुबर तुम गोकुल में जाकर वृक्ष रूप धारण करो, फिर श्री कृष्ण का स्पर्श पाने पर अपने भवन में लौट आओगे। और रंभा तुम भी मनुष्य योनि में जन्म लेकर राजा जन्मेजय की सौभाग्यशालिनी पत्नी बनो। रंभा को साप दिया जन्मेजय की पत्नी बनने का। जन्मेजय कौन है? अर्जुन के पुत्र हुए अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, उनकी पत्नी बनो। रंभा को कहा, अश्वमेध यज्ञ में इंद्र का स्पर्श पाकर तुम पुनः स्वर्ग में चली जाओगी। वो नलकुबर ही ये वृक्ष बना और रंभा ने भारत में राजा स्वचंद्र की कन्या रूप से जन्म लेकर जन्मेजय की महारानी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। जन्मेजय के अश्वमेध यज्ञ में इंद्र ने महारानी को स्पर्श कर लिया, इससे उसने योगावलंबन करके देह को त्याग दिया और वो स्वर्ग में चली गई, यानी रंभा। दोबारा उसको रंभा का शरीर प्राप्त हो गया। महामुने, इस प्रकार मैंने अर्जुन वृक्ष के भंग होने और नलकुबर, अब यहां पर यमल अर्जुन नहीं है, अर्जुन वृक्ष है। यमल का मतलब जुड़वा, है ना, जोड़ा। तो यमल अर्जुन वृक्ष नहीं है ना, वो उखल है, है ना। तो कृष्ण जो है वृक्ष से बांधे गए थे, उखल बंधन की लीला नहीं है ये, है ना। इसको दामोदर बंधन कह सकते हैं, क्योंकि तो उनका जो पेट है उसको माता ने बांधा, वृक्ष के साथ बांधा था। इस प्रकार मैंने अर्जुन वृक्ष के भंग होने और नलकुबर और रंभा से रंभा के साप मुक्त होने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। श्री कृष्ण का पुण्यदायक चरित्र जन्म मृत्यु एवं जरा का नाश करने वाला है, उसका इस रूप में वर्णन किया गया। तो इस तरह से आज हमने तीन विषयों पर चर्चा की, ठीक है। अब किसी का कोई प्रश्न है आप लोगों की ओर से चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं, आपका प्रश्न? हाँ हाँ, ये जो है ये है रूप गोस्वामी के द्वारा लिखित राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका, इसमें बहुत विस्तार से जो है सखियों के नाम है, राधा रानी के सेविकाओं के नाम है, बहुत से नाम है। अच्छा थोड़ा रुक जाइए आप लोग, एक सूचना देंगे सचिवपति प्रभु, आप लोगों से प्रार्थना, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, जो जा रहे हैं थोड़ा रुक जाइए थोड़ी देर के लिए।
हरे कृष्णा, सभी वृंदावन वासियों के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आप सबका दर्शन हो रहा है आज हमें, आज ही मैं प्रभु जी के साथ दिल्ली से हम आए हैं। तो एक सूचना देनी है कि जैसा आपने अभी एक ये दिव्य लीला का श्रवण किया कि ब्रह्म वैवत प्राण से प्रभु जी ने कितना खोज करके निकाल करके हमें ये लीला सुनाई। ऐसे ही प्रभु जी ने श्रीमद् भगवद गीता के जो प्रथम अध्याय से शुरू किया था लिखना, तो ये छठवीं पुस्तक जो है इनकी आ गई है प्रत्येक श्लोक पर, और बहुत विस्तार से ऐसे ही दिव्य लीलाओं का वर्णन करते हुए जब आप पढ़ेंगे और बहुत आध्यात्मिक आपको लाभ होगा। तो ये छठवीं पुस्तक आ गई है और दो दिन बाद दिल्ली मंदिर में उपलब्ध होगी, तो आप जो भी भक्त लेना चाहें वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा।
ग्रंथराज श्रीमन भागवतम की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की।